पृष्ठ संख्या 83, अध्याय 4, राग यमनी बिलावल। राग यमनी बिलावल बिलावल का ही एक प्रकार है, अतः स्वाभाविक रूप से ही इसकी उत्पत्ति बिलावल थाट से मानी गई है। इस राग में दोनों मध्यम का प्रयोग होता है तथा शेष स्वर शुद्ध प्रयुक्त होते हैं। यह संपूर्ण संपूर्ण जाति का राग है। इसका वादी स्वर पंचम एवं संवादी षड्ज है। बिलावल के अन्य प्रकारों की भांति ही इसका भी गायन समय प्रातः काल है। बिलावल का प्रकार होने के नाते कभी कदाचित कतिपय स्थानों पर कोमल निषाद का भी प्रयोग किया जाता है। यदि इस राग में कोमल निषाद का प्रयोग न भी किया जाए तो कोई हानि नहीं है। इसकी जाति, स्वर तथा गायन समय के विषय में सभी विद्वान एकमत हैं, परंतु इसके थाट, वादी संवादी तथा तीव्र मध्यम के प्रयोग के संबंध में विद्वानों में काफी मतभेद है। अध्ययन की सुविधा के दृष्टि से इन मतभेदों को हम निम्नलिखित ढंग में रख सकते हैं। पहला, राग यमिनी बिलावल को अधिकांश विद्वान बिलावल थाट जन्य मानते हैं, परंतु कतिपय विद्वान इसको कल्याण थाट जन्य भी मानते हैं। ऐसे विद्वान यह तर्क प्रस्तुत करते हैं कि उक्त राग में सभी स्वर शुद्ध होने के साथ ही तीव्र मध्यम का प्रयोग होता है, अतः इसे कल्याण थाट जन्य होना चाहिए। परंतु मैं इस मत से सहमत नहीं हूँ, क्योंकि यमिनी बिलावल बिलावल का ही एक प्रकार है और इसमें बिलावल अंग ही प्रधान है। इसके अतिरिक्त बिलावल का प्रकार होने के नाते प्रस्तुत राग में तीव्र मध्यम की अपेक्षा शुद्ध मध्यम का महत्व अधिक है। जितने भी मिश्र राग हैं उनके थाट निश्चित करने से पूर्व कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों को ध्यान में रखना अनिवार्य है, यथा: एक, किस प्रकार का राग है? दो, कौन से राग का अंग प्रबल है? प्रबल अंग वाला राग किस थाट का है? तीन, शुद्ध एवं विकृत स्वरों में से किस स्वर का प्रभाव अधिक है? अमुक मिश्र राग किस राग का प्रकार है, इसको ध्यान में रखकर थाट निश्चित किया जाता है। उपरोक्त इस तथ्य का स्पष्टीकरण करने हेतु हम उदाहरणार्थ राग जयंत मल्हार को ले सकते हैं। जयंत मल्हार में जय जयवंती एवं मियां मल्हार के स्वर समान तौर से प्रयुक्त होते हैं, फिर भी जयंत मल्हार को खमाज थाट जन्य न मानकर काफी थाट जन्य माना जाता है। इसके मूल में यह कारण है कि जयंत मल्हार मल्हार का ही एक प्रकार है और मियां मल्हार को काफी थाट के अंतर्गत माना जाता है, अतः इसको भी काफी थाट जन्य माना जाएगा। राग में किसका अंग प्रबल है एवं किस अंग से राग गाया जा रहा है, इसको देखते हुए जो थाट निश्चित किया जाता है, इसके लिए भूपाली और देशकार का उदाहरण प्रस्तुत किया जा सकता है। उक्त दोनों ही रागों में एक ही समान स्वरों का प्रयोग होते हुए भी दोनों ही रागों को भिन्न भिन्न थाटों के अंतर्गत माना गया है। कारण यह है कि देशकार में बिलावल अंग प्रबल है, अतः उसे बिलावल थाट जन्य माना जाता है। इसके विपरीत राग भूपाली में कल्याण अंग प्रबल होने के फलस्वरूप इसको कल्याण थाट जन्य मानते हैं। संख्या 84, शुद्ध तथा विकृत स्वरों के प्रभाव एवं महत्व को देखते हुए जो थाट का निर्णय किया जाता है। इस श्रेणी में रागों में कौशिक कान्हड़ा का उदाहरण प्रस्तुत किया जा सकता है। राग कौशिक कान्हड़ा कान्हड़ा का एक प्रकार है, परंतु इसका गायन मालकौंस अंग से होता है और सभी स्वर आसावरी थाट के प्रयुक्त होते हैं। कौशिक कान्हड़ा को कान्हड़ा का प्रकार होने पर भी काफी थाट के अंतर्गत इसलिए नहीं रख सकते क्योंकि इसमें कोमल धैवत का प्रयोग होता है जो स्पष्ट रूप से काफी थाट का लक्षण नहीं है। फलतः स्वरों के महत्व को देखते हुए कौशिक कान्हड़ा को आसावरी थाट के अंतर्गत रखा गया है। किस राग का प्रकार है, कौन सा अंग प्रबल है एवं शुद्ध तथा विकृत स्वरों में किसका महत्व अधिक है, इन सभी तथ्यों पर विचार करने से यह निश्चित हो जाता है कि यमनी बिलावल को बिलावल थाट जन्य मानना ही अधिक न्याय संगत है। यह बिलावल का ही एक प्रकार है, साथ ही बिलावल अंग प्रबल है एवं तीव्र मध्यम की अपेक्षाकृत शुद्ध मध्यम का महत्व अधिक है। अतः इन सभी तथ्यों के प्रकाश में यह स्पष्ट हो गया कि बिलावल थाट ही मानना तर्क संगत है। दूसरा, वादी संवादी के संबंध में भी सभी विद्वान एकमत नहीं हैं। इस विषय को लेकर विद्वानों में तीन वर्ग उपस्थित होते हैं। कुछ संगीताचार्य इसमें गंधार धैवत, कुछ संगीतज्ञ पंचम षड्ज को वादी संवादी का स्थान देते हैं। लेखक को षड्ज पंचम का वादी संवादित्व वाला तृतीय मत मान्य है। बिलावल थाट के प्रातःकालीन रागों में गंधार का वादित्व शास्त्रीय दृष्टि से अनुचित और असंगत प्रतीत होता है क्योंकि यह लक्षण सायंकालीन रागों का है। प्रस्तुत राग में कल्याण का मिश्रण एवं तीव्र मध्यम का स्पष्ट प्रयोग किया जाता है। यदि गंधार को वादी का स्थान प्रदान किया जाएगा तो कल्याण की छाया अधिक होने की संभावना रहेगी, जबकि यह बिलावल का प्रकार माना जाता है तो इसमें बिलावल की प्रधानता रहना अनिवार्य है। शास्त्र एवं व्यवहार दोनों ही दृष्टियों से इस राग में गंधार का वादित्व उचित नहीं प्रतीत होता है, अतः मुझे यह मत मान्य नहीं है। पृष्ठ संख्या 85। गंधार की ही भांति इसमें षड्ज को भी वादित्व प्रदान करना उचित नहीं है क्योंकि यह एक उत्तरांग प्रधान राग है। यदि वादी की व्यवस्था उत्तरांग में न संभव हो सके तो व्यवहार की दृष्टि से पूर्वांग के स्वरों में से ही वादी स्वर ग्रहण करना उचित प्रतीत होता है, परंतु इस राग में पंचम पूर्ण न्यास का स्वर है एवं उत्तरांग का स्वर भी है। पंचम के अतिरिक्त यमनी बिलावल में अन्य किसी भी स्वर का पूर्ण न्यास नहीं किया जाता। तीव्र मध्यम का प्रयोग करने के पश्चात ही इस राग का स्वरूप पूर्ण होता है। उल्लेखनीय तथ्य है कि तीव्र मध्यम का प्रयोग पंचम के सहारे होता है तथा प तीव्र म प, ध प तीव्र म प इत्यादि पंचम के बाद ही तीव्र मध्यम का प्रयोग होता है। इस राग को प्रारंभ करते समय पंचम को शीघ्र समक्ष लाकर एवं तीव्र मध्यम के प्रयोग द्वारा कल्याण मिश्रित बिलावल के प्रकार होने का संकेत दिया जाता है। पंचम के इस अनन्य महत्व को देखते हुए पंचम षड्ज को वादी संवादी मानना मेरे विचार से अधिक उपयुक्त और न्यायसंगत है, इसलिए मैंने प्रस्तुत राग में पंचम षड्ज को वादी संवादी माना है। तीसरा, इस राग में तीव्र मध्यम के प्रयोग के विषय में भी विद्वान वर्ग में मतभेद है। यमनी बिलावल के स्थाई अंतरे पर एक विहंगम दृष्टि डालने से ऐसा प्रतीत होता है कि कतिपय विद्वान तीव्र मध्यम का प्रयोग आरोह में करते हैं और कुछ अन्य विद्वान अवरोह में करते हैं। यही नहीं, वरन कुछ विद्वान तीव्र मध्यम का प्रयोग आरोह अवरोह दोनों में करते हैं। पंडित भातखंडे जी द्वारा प्रणित क्रमिक पुस्तक मालिका के पंचम भाग में यमनी की बंदिशें हैं, जैसे जब सुधि आए मित्र की तथा आन परोरी कौन गुण अथवा पिया बिन कैसे कै भरिए इत्यादि बंदिशों में प तीव्र म प ग म रे ग ग प तीव्र म प ग म ग रे ग इस प्रकार से प्रयुक्त तीव्र मध्यम को कुछ विद्वान आरोह के अंतर्गत मानते हैं, परंतु मैं इससे सहमत नहीं हूँ, क्योंकि जब हम राग में प नि ध तार सा स्वर गाते हैं तो निषाद को आरोह का वक्र स्वर मानते हैं, अथवा जब हम ग म रे सा स्वर समुदाय को प्रयोग करते हैं तो गंधार को अवरोह का वक्र स्वर मानते हैं। यमनी बिलावल में आरोह करते समय ध प तीव्र म प ग म रे ग इस प्रकार के स्वर समुदाय को भी अवरोह का वक्र स्वर गिनेंगे। उदाहरणार्थ राग बिहाग को समक्ष प्रस्तुत करते हैं, क्योंकि बिहाग में प तीव्र म प ग म ग स्वर समुदाय को प्रयोग करते हैं और तीव्र मध्यम को अवरोह का स्वर मानते हैं। यमनी बिलावल में इसी मत की पुष्टि समझनी चाहिए। पृष्ठ संख्या 86। प्रस्तुत राग में कतिपय विद्वान इस प्रकार तीव्र मध्यम का प्रयोग करते हैं, यथा रे ग तीव्र म प व तीव्र म प ध नि तारसा। तीव्र मध्यम के इस प्रयोग को वे लोग आरोह के अंतर्गत मानते हैं। स्वर्गीय पंडित भातखंडे जी की क्रमिक पुस्तक मालिका के पंचम भाग के जुग जुग जियो मोरे गुरु राई नामक विलंबित ख्याल में तीव्र मध्यम आरोह अवरोह दोनों में ही प्रयुक्त हुआ है, क्योंकि इस ख्याल में इस प्रकार के स्वर समूहों का प्रयोग हुआ है, यथा रे ग तीव्र म प व ग तीव्र म प तीव्र म प ध नि तारसा, अथवा प तीव्र म ग म ग रे ग इत्यादि। पंडित विनायक नारायण पटवर्धन जी ने अपनी पुस्तक में स्पष्ट रूप से अवरोह में तीव्र मध्यम का प्रयोग यमन कल्याण अंग से इस भांति किया है, यथा प तीव्र म ग रे ग। प्रस्तुत राग यमनी बिलावल के आरोह एवं अवरोह दोनों में तीव्र मध्यम के प्रयोग से मैं सहमत नहीं हूँ, क्योंकि किसी भी स्वर समुदाय या स्वर विशेष को राग में किस प्रकार लगाना चाहिए इसका निर्णय बहुत सी बातों को ध्यान में रखकर किया जाता है। जैसे पहला, अमुक स्वर या स्वर समुदाय के प्रयोग से संप्रकृति राग निकट तो नहीं आ जाएगा। दूसरा, राग का धर्म संकट में तो नहीं पड़ जाएगा। तीसरा, राग की रंगचकता को आघात तो नहीं पहुँचेगा। उपर्युक्त तथ्यों को ध्यान में रखकर जब हम यमनी बिलावल में तीव्र मध्यम के प्रयोग के विषय में विचार करते हैं तो हमें ज्ञात होता है कि आरोह अवरोह दोनों में ही तीव्र मध्यम का प्रयोग इस राग के धर्म के विपरीत है, क्योंकि यह राग बिलावल अंग का है। बिलावल अंग प्रधान होना इसका मुख्य धर्म है। रे ग तीव्र म प व तीव्र म ग रे अथवा तीव्र म प ध नि तारसा इस प्रकार के स्वर समूह बार बार प्रयोग किए जाएंगे तो स्वाभाविक रूप से ही कल्याण राग की छाया अधिक पड़ेगी, जो प्रस्तुत राग के धर्म के विपरीत है। इसके अतिरिक्त ऐसा नियम है कि उत्तरांग प्रधान एवं दिनगेय रागों का स्वरूप अवरोह में स्पष्ट होता है, और उत्तरांग प्रधान राग होने के नाते प्रस्तुत राग के अवरोह में ही तीव्र मध्यम का प्रयोग मेरे विचार से न्याय संगत है। अवरोह में प तीव्र म ग म ग रे इस प्रकार तीव्र मध्यम का प्रयोग भी उचित नहीं प्रतीत होता, क्योंकि यह यमन कल्याण अंग है। अतः मेरे विचार से जिस प्रकार पुरानी बंदिशों यथा पिया बिन कैसे व जब सुधि आए आन परोरी इत्यादि में तीव्र मध्यम का प्रयोग किया गया है, जैसे प तीव्र म प ग म रे ग तार सा नी ध प तीव्र म प ग म ग रे ग ठीक इसी भांति तीव्र मध्यम का प्रयोग करना एवं उसे अवरोह का स्वर मानना ही अधिक न्यायोचित प्रतीत होता है। पृष्ठ संख्या 87, स्वरों का प्रयोग तथा महत्व। प्रस्तुत राग में ऋषभ को आरोह अवरोह दोनों ही में आलंघन बहुत्व का स्थान प्राप्त है, क्योंकि जब हम आरोहात्मक स्वर गाते हैं यथा मंद्रनी मंद्रध मंद्रनी सा रे ग, तब हम कभी भी ऋषभ छोड़ते नहीं हैं। यही नहीं, प्रत्युत जब हम अवरोहात्मक स्वर गाते हैं तो ऋषभ का प्रयोग अत्यंत आवश्यक हो जाता है, जैसे प तीव्र म प ग म रे ग म ग रे ग रे सा। उपरोक्त विवरण से सिद्ध हो जाता है कि ऋषभ को आलंगन बहुत्व का स्थान प्राप्त है। प्रस्तुत राग में गंधार पर हमेशा आरोहात्मक न्यास ही होता है, जैसे सा रे ग रे सा मंद्रनी मंद्रध मंद्रनी सा रे ग प तीव्र म प ग म रे ग प तीव्र म ग म रे ग रे सा। यदि गंधार पर अवरोहात्मक न्यास करेंगे तो बिहाग एवं गौड़ सारंग अंग की छाया स्पष्ट रूप से दिखेगी, यथा प तीव्र म प ग म ग। इस प्रकार की स्वर संगति का प्रयोग करने से राग बिहाग तथा प तीव्र म प म अ ग स्वर समूह से गौड़ सारंग दृष्टव्य होगा। इन्हीं सब कारणों से इस राग में गंधार पर अवरोहात्मक न्यास सर्वथा त्याज्य है। इस प्रकार राग यमनी बिलावल में गंधार का आरोहात्मक अभ्यास बहुत्व कहेंगे। अवरोह में गंधार वक्र एवं सरल दोनों ही तरह से प्रयुक्त होता है, जैसे प तीव्र म प ग म रे ग से वक्र तथा म ग रे ग रे सा स्वर संगति से सरल रीति से प्रयोग स्पष्ट होता है। इस प्रकार प्रस्तुत राग के अवरोह में गंधार का अनाभ्यास अल्पत्व कहेंगे। ग म रे अवरोह का वक्र गंधार पूर्वांग में बिलावल अंग स्पष्ट करने में सहयोग देता है, क्योंकि ध प तीव्र म प तीव्र म प इस प्रकार उत्तरांग से उतरते समय कल्याण अंग को बिलावल के ग म रेसा स्वर समूह द्वारा ढक दिया जाता है। मध्यम का आरोह में लंघन अल्पत्व है, क्योंकि ग रे ग प ग प ग प धनी तारसा इस प्रकार मध्यम को छोड़ देते हैं। वर्ज्य इसलिए नहीं कहेंगे कि ग म रे ग म ध प तीव्र म प इस भांति मध्यम का अल्प प्रयोग आरोह में होता है। अवरोह में जब हम प तीव्र म प ग म रे ग स्वर समूहों का प्रयोग करते हैं तो पंचम से मध्यम को छोड़कर गंधार पर आकर फिर मध्यम का प्रयोग करते हैं, इस भांति मध्यम का लंघन अल्पत्व हो जाता है। जब कभी अवरोह करते समय बिलावल अंग से उतरते हैं, जैसे तार सा नी ध प म ग रे ग प व प तीव्र म प ग म रे ग प म ग रे ग, इस प्रकार मध्यम के प्रयोग को अवरोह में अनाभ्यास अल्पत्व कहेंगे, परंतु प्रस्तुत राग में पंचम का आंशिक न्यास या अभ्यास बहुत्व है। किन्हीं अर्थों में प्रस्तुत राग में पंचम का पूर्ण न्यास या अभ्यास बहुत्व भी कह सकते हैं, क्योंकि आरोह अवरोह दोनों ही में इस पर न्यास किया जाता है, जैसे ग रे ग प तीव्र म प ग म रे ग प सा मंद्रनी मंद्रध मंद्रनी सा रे ग प तीव्र म प ग म रे ग प नी ध प तीव्र म प ग म रे ग प ग प ध नी तार सा ध प ग प ध नी तार सा तार रे तार सा नी ध प तीव्र म प ग म रे ग ध नी ध प इत्यादि। धैवत का इस राग के आरोह अवरोह दोनों ही में अलंगन बहुत्व है, क्योंकि ग प ध नि तारसा व ग प नि ध नि तारसा अवरोह में तारसा नि ध प तारसा ध प, इस तरह आरोह अवरोह में धैवत का प्रयोग आवश्यक है। पृष्ठ संख्या 88। निषाद का आरोह में अलंघन बहुत्व तथा अवरोह में लंघन तथा अनाभ्यास दो प्रकार का महत्व है, क्योंकि आरोह में प नि ध नि तारसा व ग प ध नि नि तारसा इस प्रकार हमेशा निषाद का प्रयोग करते हैं। दूसरी ओर अवरोह में तारसा ध प व तारसा नि ध प स्वर संगति प्रयुक्त होती है। तार सा ध प से लंघन और तार सा नि ध प से अनाभ्यास अल्पत्व सिद्ध हो जाता है। इस राग का संप्रकृति राग देवगिरी बिलावल है। प्रस्तुत भिन्न भिन्न नियमों के फलस्वरूप दोनों में काफी अंतर दृष्टव्य होता है, यथा देवगिरी बिलावल में शुद्ध कल्याण एवं कल्याण का मिश्रण है, तो दूसरी ओर यमनी बिलावल में केवल कल्याण का मिश्रण है। देवगिरी में मिश्रण वाला राग पूर्वांग में है, यमनी बिलावल में मिश्रण वाला राग उत्तरांग में है। देवगिरी बिलावल में केवल शुद्ध मध्यम का प्रयुक्त होता है, परंतु यमनी बिलावल में दोनों मध्यम प्रयोग में आते हैं। देवगिरी का वादी संवादी षड्ज पंचम है, यमनी बिलावल का वादी संवादी पंचम षड्ज है। देवगिरी का मुख्य स्वर समुदाय इस प्रकार है, यथा ग रे सा, मंद्रनी का कर्ण लिए हुए मंद्र ध मंद्र प ग, म ग रे ग रे सा। यमनी का मुख्य समुदाय इस प्रकार है, यथा प ध प म प ग म रे ग, इस प्रकार दोनों में पर्याप्त अंतर है। आरोह सा रे ग प नि ध नि तारसा, अवरोह तारसा नि ध प तीव्र म प ग म रे ग रे सा। मुख्य स्वरूप प ध प तीव्र म प ग म रे ग म ध प तीव्र म प ग म रे ग प म ग रे ग रे सा।